श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक है जो संपूर्ण भगवद गीता का निचोड़ है और सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। बहुत सारे आचार्य लोग इस भगवद गीता के इस श्लोक की सराहना करते हैं कि इसको जानने वाला इस श्लोक के अर्थ को जो समझ लेता है उसको और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ये महत्वपूर्ण श्लोक है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एयम यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। आप सभी लोगों से विनती की शांत रहिए और मोबाइल अपने बंद कर दीजिए, फोन साइलेंट में रख दीजिए। एक घंटा भगवान के विषय में सुनना है और केवल एक घंटा भगवान को ही देना है, इसलिए और बाहर के जगह से थोड़ा छुट्टी पा लीजिए। आप सबको मैं मथुरा ले जा रहा हूं इसी समय। तो जन भगवान गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म कर्म जो है वो कैसे है, दिव्य है, अलौकिक है, सामान्य मनुष्य जैसे नहीं है। और इसको जानने वाला व्यक्ति का क्या होता है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, इसको जानने वाले व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। नैति मामेति सो अर्जुन, हे अर्जुन इस बात को, इस सिद्धांत को समझ लो, जो मेरे बारे में मेरे जन्म कर्म के विषय में ठीक ठीक समझ लेता है उसको पुनः इस संसार में, इस दुख भरे संसार में आने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अभी समझा कैसे जाए, तो भगवान ने भगवद गीता के माध्यम से हम सबको ये उपदेश दिया है, भगवद गीता का उपदेश दिया है। और श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान के भक्तों का और भगवान का चरित्र श्रीमद् भागवत में रखा गया है। इसको जो यथारूप कहता है, इसको भागवत को और भगवद गीता के संदेश को यथारूप कहता है, उससे समझना चाहिए। अभी हम सीधा मथुरा चलते हैं। मथुरा में वसुदेव और देवकी का विवाह हो गया है और कंस अपनी चचेरे बहन का रथ हाँक रहा है। कंस वास्तव में बहुत बड़ा असुर था कि, लेकिन उस समय अब तक तो उसकी असुर प्रवृत्ति प्रकट नहीं हुई थी, इसलिए कंस यदि भी राजा होते हुए भी उसके हाथ, उसके साथ में बहुत सारे सेना होते हुए भी कोई भी देवकी का रथ हार सकता था, लेकिन अपनी बहन देवकी की प्रसन्नता के लिए कंस स्वयं उस रथ को हाँकने लगा। और हाँकते 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 जब वो चल रहा था उस समय आकाशवाणी हुई। अभी आकाशवाणी कौन करता है, देवता लोग करते हैं। और आकाशवाणी ने कहा कि अरे मूर्ख कंस, तू जानता है तू कितनी बड़ी गलती कर रहा है, किसका रथ हाँक रहा है, अरे इसका आठवां पुत्र तेरा वध करने वाला है। और जैसी कंस ने यह सुन लिया, उसे आकाशवाणी के माध्यम से, कंस मनुष्यों की बताई बात पर विश्वास नहीं करता, इसलिए देवताओं ने बोला, कंस को विश्वास था कि देवता लोग झूठ नहीं बोलते, इसलिए कंस ने क्या किया, उसकी बात मानकर तुरंत तलवार निकाल ली और देवकी को मारने का प्रयत्न किया गया। तुरंत तलवार निकाल ली, उसके बाल पकड़ लिए। अभी कितना क्षण भर का अंतर देखिए, एक समय पहले, कुछ क्षण पहले ये कंस अपनी बहन को, बात नहीं करना चाहिए, कुछ समय पहले ये कंस अपनी बहन को विदा कर रहा था और अभी तुरंत आकाशवाणी सुन लिए तो संबंध खत्म। वही भाई तलवार लेकर उस बहन देवकी की केश पकड़ और उसको मार रहा है। अब ये देवकी की जरा स्थिति का विचार कीजिए, एक तो इसकी बहन उस ऊपर से नवविवाहिता, नया नया अभी भी शादी हुआ है और जो शादी के जो अलंकार आदि वो उतरे नहीं है अब तक, और ये कंस मारने चला है अपनी बहन को। अब वसुदेव जी को बड़ा चिंता हो गई कि अब क्या किया जाए, विवाह तो पत्नी है उनकी, तो पति का सबसे बड़ा कर्तव्य कि किसी तरह से अपनी पत्नी को बचा ले। तो वसुदेव बहुत एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने विचार किया कि किसी ना किसी तरह से मुझे इस समय अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। स्वाभाविक है, अगर एक पत्नी अगर मुसीबत में पड़ जाए, हॉस्पिटल में बीमार हो जाए या कुछ हो जाए, तो पति का सब पति अपना सब कुछ छोड़ देगा, ऑफिस से छुट्टी ले लेगा, सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी पत्नी की सेवा करेगा। जो कभी नहीं किया वो कर लेगा, पत्नी की सेवा करेगा। कब? जब वास्तव देखा कि मेरी पत्नी मुसीबत में है, तो बेचारा अपना सारे धर्मों को त्याग करेगा और अपनी पत्नी की अच्छे से सेवा करेगा। तो वसुदेव जी विचार कर रहे थे, क्या करूं जिससे इस महाअसुर से मेरी पत्नी बच जाए। तो वसुदेव जी समझाने लगे कंस को कि हे कंस, तू ये आकाशवाणी सुनकर इतना भयभीत क्यों हुआ है? तुझे क्या लगता है कि क्या मरने वाले नहीं है क्या? अरे जन्म के समय ही मृत्यु निश्चित होती है। जब किसी का जन्म लेता है तो उसका मृत्यु का दिन निश्चित है। आज मरे या 100 साल के बाद क्या फर्क पड़ने वाला है? मृत्यु मरना तो है ही। तो इस आकाशवाणी सुनकर आप इतना डिस्टर्ब क्यों हो रहे हैं? तो कंस और क्रोध में आ गए। तो उसने कहा, देखिए जरा विचार कीजिए कि हर एक व्यक्ति को अपने कर्मानुसार ही ये शरीर मिलता है। आपने हमने पूर्व जन्म में जैसा कर्म किया होगा उस हिसाब उस कैलकुलेशन से, मतलब उसका जो हिसाब किताब है उस अनुसार हमें ये शरीर मिला, ये स्वजन मिले, ये आसपास के जितने सारे लोग हैं, सुख दुख इत्यादि सब कुछ जो है वो हमें अपने प्रारब्ध के कर्मानुसार मिलता है। पूर्व जन्म में हमने जो कुछ किया होगा उसके अनुसार ही हमें क्या मिलता है? ये शरीर मिलता है। और इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं वो निर्धारित करता है कि हमारा अगला जीवन जो है, अर्थात ये शरीर छूटने के बाद क्या होने वाला है। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग अजनमर है, शरीर पकड़ा है, बूढ़ा का ग्रस रहा है। इसका अर्थ ये कि एक मृत्यु का दिन नजदीक आ रहा है। तो वसुदेव जी समझा रहे हैं कंस को कि कंस की मृत्यु निश्चित है तुम्हारी, तो इसलिए तुम चिंता की कोई आवश्यकता, इतना चिंता मत करो, इस बेचारे देवकी को मत मारो। इतना कहने से भी कंस नहीं माना, कंस का क्रोध जा नहीं रहा था। तो वसुदेव जी ने एक युक्ति लगाई। वसुदेव ने विचार किया कि किसी तरह से मैं अपने बच्चों को इसके हाथ सौंप देता हूँ, देवकी को बचा लेता हूँ। बच्चे तो आए नहीं अब तक, जो भविष्य में आने वाले हैं। तो वसुदेव जी कहते हैं, कंस देखो तुमको देवकी से तो भय नहीं है ना? बोला, नहीं भय नहीं है। आकाशवाणी ने क्या कहा है कि इसके 8वां पुत्र तुम्हें तुम्हारा वध करेगा, सही? तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मुझसे देवकी के माध्यम से जो भी पुत्र होंगे वो सब मैं तुम्हें सौंप दूंगा। और देखिए कंस जो था वो जैसा भी था लेकिन उसको वसुदेव जी पर पूर्ण विश्वास था। क्यों? क्योंकि वसुदेव जी सत्यनिष्ठ थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, क्योंकि उनके साथ कार्य करता था, उनका मंत्री था। तो वसुदेव जी स्वाभाविक रूप से, वसुदेव जी का स्वभाव कंस को पता था कि झूठ नहीं बोलता है, अगर एक बार कुछ बोल दे तो वो पूरा करेगा ही करेगा। इसलिए कंस जैसा असुर भी वसुदेव जी की बात पर विश्वास कर गया और देवकी को छोड़ दिया। अब देवकी को छोड़ दिया तो ये देवताओं में हलचल मच गई कि अरे अभी देवता लोग तो चाहते थे कि ये कंस मारा जाए क्योंकि सबके नाक में दम हो गया था। तो किसी तरह से देवता लोग चाहते थे कि भगवान का अवतार जल्दी जल्दी हो जाए, अभी भगवान आने वाले थे 8वें पुत्र के रूप में। तो ये कंस ने अभी इसको छोड़ दिया है, तो छोड़ दिया है तो पता नहीं कब फिर 8 पुत्र को कब मारेगा, क्या होगा। तो कंस को थोड़ा सा उकसाने के लिए सारे देवताओं ने नारद जी को भेज दिया कंस के पास। अब नारद जी कंस के पास आते हैं और नारद जी कंस से कहते हैं, अरे मूर्ख कंस, ये दूसरी बार मूर्ख कंस को मूर्ख बोला जा रहा है, कितना मूर्ख है तू? तू जानता है क्या ये नंद यशोदा और जितने सारे वो ब्रज में जो इतने सारे लोग पैदा हुए हैं, और ये वासुदेव देवकी और ये यदुवंशी भोजवंशी ये सब कौन है? तू जानता है कौन है? ये सब देवता है, ये तुम्हें मारने की बहुत बड़ी सेटिंग है। अच्छा जी, तुम्हें तुमने जो देवताओं के नाक में दम कर दिया है ना, उस कारण से देवताओं ने तुम्हारे लिए फील्डिंग लगाई है। सारे सारे देवता लोग यदु वंश जन्म लिए हैं और तुम्हें मारने के लिए एक एक करके तैयार हो रहे हैं, और तुमने वसुदेव के पुत्र को छोड़ दिया। अरे जो जो पैदा होगा बच्चा वो कोई विष्णु हो सकता है, तो मैं क्या करूं? पकड़ो वसुदेव और देवकी को और मारना शुरू हो जाएगा एक बच्चे को। अच्छा, जैसे ही कंस ने नारद जी के मुख से यह सुना कि देवताओं ने उसको मारने के लिए इतनी बड़ी फील्डिंग लगाई है, तब कंस ने सोचा कि अच्छा हो गया नारद जी, कोटि कोटि धन्यवाद आपको कि आपने मुझे ये बता दिया। तो अब कंस ने अपने बल का प्रयोग करते हुए सारे यदुवंशियों को, भोज वंशियों को, वृष्णि वंशियों को परेशान करना प्रारंभ कर दिया। कंस तो अपने आप में महापराक्रमी था ही, लेकिन उसके साथ उसके ससुर जरासंध जी का बड़ा, जरासंध जी ससुर जी थे, उसके ससुर थे, तो उनका बड़ा सपोर्ट था, उसको पूरी की पूरी ताकत थी उनके साथ। तो जरासंध जी का सपोर्ट, अपना खुद का पराक्रम, और साथ में अघासुर, बकासुर, पूतना, इतने जो महाभयंकर आसुर थे, इनकी इनका सामर्थ्य, तो इन सब के बल से कंस ने सारे यदुवंशियों का नाश करना प्रारंभ कर दिया, सबको परेशान करना प्रारंभ कर दिया। और कंस के इस अत्याचार के भय के कारण सब लोगों ने मथुरा छोड़ दिया। अधिक से अधिक लोग सब अलग अलग जगह में जाके स्थित हो गए, सब लोग मथुरा छोड़कर जाने लग गए। अब कंस ने क्या किया कि अपने वसुदेव और देवकी को तो पहले तुरंत बंदी बना लिया, कहा कि पहले इन दोनों को बंदी बना लो। तीन दोनों को बंदी बना लिया, और फिर वसुदेव और देवकी को हर वर्ष एक एक पुत्र उत्पन्न हुए। सबसे पहले पुत्र था कीर्तिमान था। तो कीर्तिमान को लेके जब वसुदेव जी पहुंचे, तो शुरुआत में तो वसुदेव जी को उन्होंने कहा कि ठीक है तुम चले जाओ। ये बेचारा उसका छोटा छोटा कोमल कोमल शरीर देखकर, उसका मुंह देखकर कंस को छोड़ दिया। लेकिन वसुदेव जी को विश्वास नहीं था कि ये कंस इतना महाआसुर मुझे इतनी आसानी से छोड़ देगा। तो जैसे ही वसुदेव जी जा रहे थे, तुरंत बुलावा आ गया कि नहीं बुला लो। क्यों, ऐसे कैसे परिवर्तन आ गया भाई? कंस की मानसिकता ठीक हो गई थी कुछ समय के लिए, लेकिन कंस की जो संगति थी वो ठीक नहीं थी। अभी जिसका पूतना, अघासुर, बकासुर, मुष्टि, चारण, ऐसे महापराक्रमी असुर जिसके मित्र हो, तो ऐसे उनकी सलाह भी ऐसी भयानक ही होगी। वो उन्होंने सलाह दी, अरे महाराज कंस, आप नारद देवताओं ने बता दिया, नारद जी ने बता दिया, लेकिन फिर भी आप नहीं सुन रहे, उनको बुलाइए और मारना चालू कीजिए। तो उन्होंने तुरंत, कंस ने पहले पुत्र, दूसरा पुत्र, तीसरा पुत्र, चौथा पुत्र, पांचवा पुत्र, छठे पुत्र तक आ गए, छह पुत्रों को मार दिया। और जब सातवां पुत्र होने वाला था, अभी सातवां पुत्र जो था वो कोई साधारण पुत्र नहीं था। सातवां पुत्र कौन था? साक्षात अनंत शेष, साक्षात बलराम। देखिए श्री कृष्ण और बलराम, ये दोनों ही सुप्रीम पर्सनैलिटी है, अर्थात परब्रह्म है, पूर्ण पुरुषोत्तम है। इन दोनों में मात्र रंग का भेद है। ऐसा नहीं समझने कि कृष्ण और बलराम में कोई बहुत बड़ा अंतर है, नहीं, कृष्ण बलराम एक ही है, बस रंग का भेद है और लीलाओं का अलग अलग भेद है। भगवान ने योग माया को बुला लिया। जब बलराम जी का जन्म होने वाला था, तब भगवान ने योग माया को बुलाया और कहा कि हे योग माया, तुम्हें एक मेरी सेवा करनी है। सेवा यह करनी है कि इस समय जो देवकी है उसके गर्भ में मेरा अंश है, अनंत अनंत शेष है, और वसुदेव जी की पत्नी गोकुल में है नंद बाबा के पास, जिनका नाम है रोहिणी। तो तुम्हारा कार्य यह है कि तुम्हें मेरे इस अंश को देवकी के गर्भ से स्थानांतरित करते हुए आपको रोहिणी के गर्भ में स्थापित करना है।
अच्छा,
और क्या सेवा है प्रभु? यही सेवा करनी है, और इसके लिए तुम्हें मेरा आशीर्वाद प्राप्त है कि तुम्हें इस संसार में चंडी, दुर्गा, कृष्णा, ईश्वरी, इस तरह से कई सारे जो दुर्गा जी के नाम है उस नाम से जानी जाएगी। तो भगवान ने कहा, भगवान के इस आदेश को आकर उन्होंने कहा ठीक है, और योग माया ने बलराम जी को देवकी के गर्भ से ट्रांसफर कर दिया रोहिणी के गर्भ में, और इसलिए उनका नाम पड़ा संकर्षण। सबको रमाते हैं इसलिए उनका एक नाम राम भी है, और सबके सबके बल है इसलिए उनका नाम बलभद्र भी है। इसलिए भगवान बलराम जी के तीन नाम विख्यात है। तो इस तरह से जब बलराम जी का जन्म हो गया, वास्तव में बलराम जी पहले आ गए थे। आप देखा कि अक्सर बहुत सारे अवतारों में, जैसे राम अवतार में लक्ष्मण जी छोटे भाई बनकर आए थे, लेकिन जब राम अवतार में होता क्या था कि राम जी बोलते थे और लक्ष्मण जी सुनते थे। बड़ी बड़ी परशुराम जी के समय, जब परशुराम जी आए थे और श्री राम को बहुत कुछ बोल रहे थे, तो लक्ष्मण जी को इतना क्रोध आ गया था कि इसी समय परशुराम जी को उड़ा दे, लेकिन बेचारे जो राम जी ने डांट दिया कि शांत रहो, तो चुप बैठना पड़ता था। कई ऐसे प्रसंगों में श्री राम उनको डांट देते थे, तो लक्ष्मण जी निर्णय किया बस हो गया तमाशा, छोटा भाई बनकर जीवन में कभी नहीं आऊंगा, जब भी आऊंगा बड़ा बनकर आऊंगा। तो अगले कृष्ण अवतार में बलराम जी बड़े भाई बनकर आ गए, बोले कि भाई अब सुन, सेवा तो करनी है कृष्ण की, छोटा हो या बड़ा सेवा तो करनी है, लेकिन छोटा हो तो दिक्कत ये होती है कि हमेशा गाली सुननी पड़ती है, डांट खानी पड़ती है, और बड़ा होता हूँ तो डांट दे सकता हूँ। इसलिए इस बार बलराम जी जो है या लक्ष्मण जी जो है, वो इस बार बलराम जी बड़े भाई बनकर आ गए। अब भगवान के आने का समय हो गया, और वास्तव में एक संसार में एक मैसेज देखिए, भगवान ने योग माया को क्यों बुलाया? योग माया को बुला रही है, ट्रांसफर करने का आदेश दिया। भगवान ये स्थापित करना चाहते थे जगत में कि यद्यपि ये जो लड़का पहले मेरे से आ रहा है वो मेरा बड़ा भाई बनकर आ रहा है, लेकिन ओरिजिनल नहीं हूँ। तो भगवान कुछ आचार्य लोग इस तरह से उत्प्रेक्षा करते हैं कि यद्यपि ये बलराम जी है, बड़े भाई बनकर आ रहा है, लेकिन बड़ा वास्तव में मैं हूँ। ठीक है, इसलिए योग माया के माध्यम से इस तरह से आदेश दिलवा दिए। तो भगवान का आने का समय हो गया। जब लेकिन भगवान के आने के पहले एक ऐसी घटना हो गई कि सातवां गर्भ नष्ट हो गया। अब हल्ला क्या हो गया? देवकी के गर्भ से तो ट्रांसफर हो गया, तो देवकी के गर्भ तो नष्ट हो गया, सातवां पुत्र को कहा है कंस ने मारा नहीं, तो सारे जो मथुरा में हल्ला हो गया कि कंस कितना नीचे भाई, ऐसे तो मारता ही था, अभी तो तंत्र मंत्र करके बच्चे को गर्भ में उड़ा दिया। देखिए कि एक जगह कहावत है ना कि कहीं पे भी चोरी होती है तो कोई नामांकित चोर होता है, तो कहीं पे भी चोरी हो जाएगी तो बिचार उसी का नाम आएगा। तो यहाँ पर इस सातवें जो बच्चा आ रहा था उसमें बिचारे कंस का कोई हाथ नहीं था, लेकिन सारे लोग कंस को इतनी घरों घरों में गालियां दे रहे थे कि इस नीच ने ही ऐसा कार्य किया होगा, इतना नीच है कि क्या बताया जाए। तो रोहिणी नक्षत्र था, रोहिणी नक्षत्र था, और सब जगह वातावरण एकदम प्रसन्नता थी, सब जगह पे सबके हृदय में एक अद्भुत आनंद हो रहा था, अद्भुत आनंद। पक्षी रात के समय उड़ रहे थे, पक्षी तो वैसे दिन में करते लेकिन पक्षी रात के समय कलरव कर रहे थे, और रात के समय ताला जो सरोवर है उनमें कमल खिले हुए थे। कमल तो दिन में खिलते हैं लेकिन यहाँ पर भगवान का प्राकट्य होने वाला है, इस कारण से कमल रात को खिल रहे थे। सारे पक्षारे पशु पक्षी सब लोग जगे हुए थे, एक प्रकार का उत्सव का माहौल था सब जगह। जो साधु लोग थे, साधु ऋषि, जितने सारे साधु लोग थे, ऋषिगण थे, उनके चित्त में एक आनंद की अनुभूति उन लोगों को हो रही थी। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया क्योंकि कंस ने इतना अत्याचार कर दिया था, इतना अत्याचार कर दिया था इन लोगों के ऊपर, सब दुखी हो गए थे। कोई भी यज्ञ इत्यादि करते थे तो इनको मारा पीटा जाता था, भगवान विष्णु की पूजा करते थे इनको परेशान किया जाता था। तो इस कारण से कंस ने क्या किया, इन लोगों को बहुत परेशान किया था। लेकिन अब जब भगवान प्रकट होने वाले हैं तब यहाँ पर एक अद्भुत प्रकार का आनंद उनके हृदय में उदित हुआ। और भगवान ने जिस तरह से चंद्र पूर्व दिशा में उदित होता है उसी तरह से भगवान वसुदेव जी के मन में आ गए। देखिए यहां पर हम लोग भगवान के जन्म कर्म की चर्चा कर रहे हैं, भगवान के जन्म। देखिए इस प्राकृत जगत में जो जन्म होता है वो स्त्री और पुरुष के संसर्ग से होता है, लेकिन यहां पर भगवान कैसे प्रकट हो रहे इस पर ध्यान देना चाहिए। यही अंतर है जीव में और भगवान में, ये अंतर है, ये हमें समझना चाहिए।
मैं काम कर रहा हूं
कि भगवान भगवान होता है और जीव जीव होता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी के मन में प्रकट हुए और वसुदेव जी के मन से वो देवकी के मन में ट्रांसफर हुए, स्थानांतरित हुए और वहां से वो देवकी के गर्भ में गए। और ये है भगवान के जन्म की जन्म प्रकट होने का स्टाइल। वसुदेव और देवकी के इस तरह से दिव्य पुरुष थे कि दिव्य दाम्पत्य थे, इस तरह से भगवान प्रकट हुए। उसके बाद भगवान देवकी के गर्भ से बाहर आए और जैसे ही भगवान देवकी के गर्भ से बाहर आ गए तब ब्रह्मा शंकर और इतने सारे 33 करोड़ देवी देवता है वो कंस के कारागार में जेल में जाकर बैठ गए। वहां पर भगवान की स्तुति करने लगे, सब लोग भगवान का स्वागत करने के लिए वहां पर उपस्थित हो गए। अब विचार कीजिए, कभी सुना है आप लोगों ने कि कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में जन्म ले रहा है और सारे देवी देवता उतर गए हॉस्पिटल में, कभी सुना है? देखिए एक तरफ प्राकृत जगत के प्राकृत व्यक्ति का जन्म और एक अप्राकृत व्यक्ति का भगवान का इस प्राकृत जगत में आगमन, कैसी दो अलग अलग बात है। कितनी एक तरफ भगवान का आने का कितना दिव्य तरीका है और एक मनुष्य का साथ। लेकिन यही मनुष्य अपने आप को भगवान के रूप में बताता है कि मैं भगवान हूं। संसार में कई सारे ऐसे पाखंडी लोग हैं जो अपने आप को भगवान के रूप में स्थापित करते हैं, जरा उनको देखना चाहिए कि इनके जन्म के समय ये कहाँ थे, हॉस्पिटल में कहाँ पड़े थे और कौन से देवता इनके स्वागत के लिए आए थे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का अवतरित हो रहा है और सारे देवता, सारे ब्रह्मांड के सारे जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, वे जेल में कंस के कारागार में उनका स्वागत करने के लिए जाते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। तो भगवान जब देवता लोग स्तुति करके जाते हैं तब वसुदेव और देवकी जो निद्रा में रहते हैं उनको पता चल जाता है कि उनके वहां पर लाला का जन्म हुआ है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। लेकिन यहाँ पर भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए भगवान जन्म लेते हैं। एक साधारण जो बालक आता है वो नग्न आता है और आते ही क्या करता है, उमा उमा रोता रहता है, उसे कुछ भान नहीं होता कि कहाँ जन्म लिया है, कहाँ पैदा, इंडिया में है या ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, कहाँ जन्म लिया है, उसे कुछ पता नहीं होता। हिंदू के घर में है, मुसलमान के है, क्रिश्चियन के घर पे है या पारसी के घर पे है, उसे कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन आप थोड़े समय में आपको भगवान क्या है यह पता चल जाएगा। तो प्रकट हो गए भगवान, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, बोल रुकुट कौस्तुभ मणि श्रीवत सचिन्न, इस तरह से संपूर्ण आभूषणों सहित छोटे से बालक चार भुजाओं के भगवान प्रकट हो गए और वसुदेव और देवकी आश्चर्यचकित हो गए कि बाप रे, वास्तव में हमारे घर पे भगवान का जन्म हुआ है। हम लोग दोनों पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के माता पिता बने हैं। तो ये उनको जो पता चला तो वे दोनों ने झुक कर भगवान को प्रणाम कर लिया और वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया कि कहा, प्रभु आप यहाँ पर अवतरित हुए हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए। प्रभु आप तो जानते ही हैं कि इस समय कंस के सहित और जो असुरी प्रवृत्ति के लोगों ने इस पृथ्वी में बड़ा अत्याचार करके रखा हुआ है, आपके अवतार का प्रयोजन यही है कि इन सारे असुरों का वध करें और पुनः धर्म की स्थापना करें। इस तरह से वसुदेव जी प्रार्थना करते हैं और देवकी यह समझ रही है कि ये चार भुजा वाले भगवान है, लेकिन देवकी को एक भय सता रहा था। देवकी को यह भय सता रहा था कि कंस अभी आएगा, तलवार निकालेगा या पता नहीं उसको बच्चे को उठाएगा और फेंक देगा, मार देगा। तो यद्यपि देवकी समझ रही थी कि ये भगवान है, लेकिन एक माँ माँ का जो वात्सल्य है उस कारण से देवकी को यह लग रहा था कि भगवान अपना छोटे चतुर्भुज रूप है वो छुपा ले, किस तरह छुपा ले और क्या करे और एक छोटे द्विभुज रूप में आ जाए, और किस तरह से हम लोगों को भी उपाय करना चाहिए कि भगवान को किस तरह से यहाँ से बाहर निकाला जाए। इसलिए देवकी भयभीत होते हुए भगवान से प्रार्थना करेगी कि प्रभु आप ही अपने चतुर्भुज रूप साधारण कंस जैसे महाअसुर के सामने या उसके परिकरों के सामने मत प्रकट कीजिएगा, इसको छुपा लीजिए। मुझे बहुत भय लग रहा है प्रभु कि अभी कंस आ जाएगा, कंस आपको मार देगा, तब क्या होगा। तब भगवान अपने माँ और अपने पिता के सामने कुछ उपदेश देते हैं कि बोलते हैं, माता पिता वसुदेव जी, मैं आपको आपके पूर्व जन्म की कथा सुनाना चाहता हूं। जानते हैं मैं आपका पुत्र कैसे बना कैसे बना? क्योंकि आपने इसके लिए प्रार्थना की थी। कब प्रार्थना की थी जी? बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि का निर्माण हुआ था उस समय ब्रह्मा जी के माध्यम से वसुदेव जी आप सुतपा और माता कृष्णी के रूप में आप जन्म और देवकी जी आप कृष्णी के रूप में थी और मैं आपका पुत्र बना था कृष्णी गर्भ। तो उस समय आपने ब्रह्मा जी के आदेशों से आपने मेरी खूब तपस्या की, खूब कठोर तपस्या की और आपने मुझसे वरदान मांगा कि मुझे आप जैसा ही पुत्र चाहिए। तो भगवान ने विचार किया मेरे जैसा तो कोई नहीं हो सकता, मेरे जैसा तो मैं ही हूं, तो मुझे ही आना पड़ेगा। तो भगवान ने देवकी और वसुदेव की तपस्या से प्रसन्न होते हुए उन्होंने उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। तो ये माता पिता, ये पिताजी माताजी, ये आपके पहले जन्म की कथा है। दूसरा जन्म आदित्य और कश्यप जी के रूप में आप दोनों ने जन्म लिया था। उस समय में उपेंद्र बनकर आया था, इंद्र का भाई बनकर आया था। तो वे ये रहा आपका दूसरा जन्म और इस समय आप वसुदेव और देवकी के रूप में है और मैं हूं साक्षात श्री कृष्ण आपका पुत्र, तीसरा पुत्र। इस तरह से ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से मैं तीन बार आपका पुत्र बना हूं और ये सब मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको विश्वास हो जाए कि मैं साधारण बच्चा नहीं हूं, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम हूं और यहां पर मैं धर्म की स्थापना करने हेतु आया हूं। अब मुझे बताइए कि जहां आज संसार में जो अपने आप को लोग भगवान के नाम में प्रकट करते हैं, भगवान में भगवान हूं इस तरह से प्रजन करते हैं, हमारी उन लोगों से यही विनती है कि उन लोगों को तो अपना, यहाँ पे भगवान ने उन अपना तो बता दिया, अपने सहित अपने माता पिता के पूर्व जन्म का भी इतिहास बता दिया, वो भी कैसे छोटे से ही पहले दिन। क्या हमारे यहाँ पे ऐसा कोई पुत्र होता है जो अपने माता पिता को अपने माता पिता का ऐसा इतिहास सुना दे? नहीं, उसको तो खुद पता नहीं होता कि वो कहां से आया है, अपने बारे में जानकारी नहीं है कि जीव कहां से आया है और कहां जाएगा, मरने के बाद कहां जाएगा या जन्म लेने के जन्म कहां से हुआ है, नहीं पता होता। तो कैसे है हम लोग एक किसी साधारण बद्ध जीव को भगवान के रूप में स्वीकार करें? नहीं होता। सारे शास्त्रों में सारे आचार्यगण, मेरा भाई तुकाराम, बड़े बड़े वैष्णव आचार्य, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है। सारे शास्त्रों ने स्वीकार किया है, सारे देवी देवताओं ने स्वीकार किया है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और वसुदेव देवकी से कहते हैं कि यदि आप फिर भी भयभीत, इतना सब कहने के बाद लास्ट में कहते हैं कि यदि आप फिर भी भयभीत है तो मुझे आप गोकुल छोड़कर आ सकते हैं, वहां पर एक पुत्री का जन्म हुआ है तो उस पुत्री को आप यहां लेकर आइए और मुझे वहां छोड़ दीजिए। देखिए भगवान का ये प्लान है भगवान चाहे तो यहाँ पर उपस्थित रहते हुए भी अपना कार्य कर सकते थे, लेकिन भगवान ने अपने माता पिता की संतुष्टि के लिए और ब्रज में उनको और बहुत सारे माखन चोरी इत्यादि की लीला करनी थी, इसलिए उस कारण से भगवान ने जाना चाहा। अब वसुदेव जी ने भगवान की बात इतना कहकर भगवान चुप हो गए। अब वसुदेव जी चिंता में पड़ गए कि गोकुल ले जाना इस समय इतनी रात को और इतने सारे पहरेदार, इतने सारे बड़े बड़े दरवाजे, ये तो असंभव बात है, कैसे ले जाऊंगा मैं। तो वहां पर देव की इच्छा से आप एक बड़ी टोकरी आ गई, टोकरी आ गई वहां पे, और जैसे बिना सोचे कि अब मैं कैसे इस दरवाजे से निकलूंगा, अगर मान लीजिए कि इस कमरे में भी, इस कमरे को अगर हम सब तरह से लॉक कर दें, पूरा बिल्डिंग मेन गेट लॉक कर, जितने सारे दरवाजे सब लॉक कर दें, हम लोग कैसे इसमें से बाहर निकल पाएंगे। तो वही स्थिति थी, सब जगह बाहर से कमरे लॉक थे, तो कैसे अब अंदर का व्यक्ति बाहर जाएगा। लेकिन भगवान की जो योग माया है वो अद्भुत है। जैसे ही भगवान को वसुदेव जी ने अपने 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 धारण कर लिया, मतलब उठा लिया, वैसे ही पहली घटना तो ये हो गई कि उनकी जितनी सारी बेड़ियां थी वो खुल गई। अरे जिनका नाम जप करने से, जिनका भगवान श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन करने से करोड़ों करोड़ों जन्मों का प्रारब्ध नष्ट हो जाता है, तो यहाँ पर वही भगवान अगर किसी के गोद में है तो उसकी बेड़ी अगर टूट जाए तो कौन सी बड़ी बात है कि नहीं। तो वही भगवान छोटे से बालक वसुदेव जी अभी जा रहे हैं, और अपने आप योग माया की ऐसी व्यवस्था थी कि सारे दरवाजे अपने आप बड़े बड़े किवाड़ थे खुल गए, और जितने सारे पहरेदार थे झड़ अपना टॉप सिक्योरिटी थी, एकदम सारे के सारे सिक्योरिटी एकदम डब, सब सो रहे थे, ऐसे सो रहे थे मान लो कि मुर्दे हो। और वसुदेव जी भगवान की बात पर पूर्ण विश्वास रखते हुए आगे बढ़ रहे थे। हमें भी भगवान की बात पर पूर्ण विश्वास रखते हुए जीवन कृष्ण को दे देना चाहिए। जब भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुचा, जब भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, और यह शरीर तुम्हारा छूटने के पश्चात तुम मेरे धाम में आ जाओगे, तब धाम परम मम। जब भगवान कह रहे हैं तो उनकी बात पर विश्वास रखने में क्या जाता है। जब वसुदेव जी ने विश्वास रखा तो उनके हाथों की बेड़ी खुल गई। यदि हम लोग भी भगवान की बात पर विश्वास रखेंगे तो हमारे ये संसार बंधन कटने में देर नहीं लगेगी। तो वसुदेव जी उसी भगवान को लेकर बाहर निकल रहे थे, निकलते निकलते इतने सारे पहरेदार, इतने सारे शेर भी, कुत्ते पित्ते भी होते थे उनके पास, सब बेहोश, और सारे अंतिम द्वार भी खुल गया, और वसुदेव जी ऐसे बाहर पड़े तो यमुना जी में बाढ़ आ गई थी। अब लो एक मुसीबत खत्म, तो अभी यमुना जी में बाढ़। अब कैसे बच्चे को बाढ़ आने, मतलब विचार कीजिए, जैसे आज हम लोग भारत में कई बार देख रहे बाढ़ आती थी कितने सारे लोग बह जाते हैं, वैसी बाढ़ यमुना जी में आ गई थी। अब वसुदेव जी पूर्ण भगवान को पार करवाना है, गोकुल पहुंचाना है, कंस के हाथों से बचाना है, इस भाव को लेते हुए वसुदेव जी ने लाला को अपने सर पर रख दिया और पानी में बिना सोचे कूद गए। और चल रहे थे तो यमुना जी भी, भगवान आए हैं मेरी, यमुना जी भी भगवान की पटरानी है और भगवान मेरी गोद में आए हैं ये जानकर यमुना जी को अष्टसाथी विकार हो गए उसमें, और यमुना जी बढ़ने लगी, भगवान के चरण कमलों को छूने के लिए यमुना जी बढ़ते जा रही है। और भगवान भी सोच रहे थे कि अरे यमुना जी अगर आप इतने बढ़ गए तो मेरे पिताजी डूब, मेरे पापा डूब जाएंगे। तो भगवान ने हल्का सा अपना पैर नीचे कर दिया और यमुना जी को छू दिया, स्पर्श करा दिया, तो यमुना जी नीचे हो गई। अब क्या, अब जिस तरह से समुद्र ने भगवान श्री राम को रास्ता दे दिया था लंका पहुंचने के लिए, उसी तरह से यमुना जी ने वसुदेव जी को मार्ग दे दिया। दोनों जगह से खड़ी हो गई दीवार जैसे, और बीच में से वसुदेव जी ने रास्ता खोल दिया, और वसुदेव जी गर्व के साथ अपने बेटे को लेकर जा रहे थे। लेकिन अभी इंद्रदेव वर्षा कर रहे थे, कि इंद्रदेव का भाव यह था वर्षा करने के पीछे कि यदि यदि भी सब लोग सो रहे हैं लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि भगवान ट्रांसफर हो रहे हैं, क्योंकि इंद्र का काम करने के लिए भगवान आते हैं। इंद्रियारी व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे, इंद्र की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। तो इंद्र एकदम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, बारिश गिरा रहे थे। अब यह अनंत शेष को बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे हो कि अभी वसुदेव जी तो है धारण किए हुए, सारा पानी गिर रहा है भगवान पर। तो भगवान अनंत शेष वसुदेव जी के छत्री, वसुदेव जी के ऊपर छत्री बनकर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अब कोई प्रश्न, कोई आचार्य कोई प्रश्न पूछने के लिए वसुदेव जी ऐसे आनंद शेष जी ऐसे पीछे से क्यों चल रहे थे, आगे से चल सकते गाय कैसे पीछे से क्यों? अरे भैया, एक तो भगवान श्री कृष्ण उनके स्वामी, दूसरे उनके पिताजी, पिताजी के पीछे भी चलना ही ठीक होता है। तो इसलिए आनंद शेष हमेशा उनके पीछे भी चल रहे थे। और वसुदेव जी आगे बढ़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, बढ़ते 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 गोकुल पहुंच गए। और गोकुल में वहां पर वही स्थिति थी जो मथुरा में थे, सब लोग सो गए थे। और वहां पर चुपके से वसुदेव जी नंद भवन में जाते हैं। और वहां पर जैसे भगवान ने बताया होता है, वहां पर एक लाली का जन्म हुआ रहता है, यशोदा पर पुत्री हुई रहती है। तो वहां पर अपने पुत्र को रखकर वहां की लाली को उठाकर वसुदेव जी लौट पड़े। अब वसुदेव जी लौट पड़े। वसुदेव जी आ रहे थे, वसुदेव जी फिर जेल में आए। और जेल में आते आते जैसे ही वसुदेव जी ने प्रवेश किया जेल कंस के कारागृह में, तो फिर सारे किवाड़े बंद होने लग गए, अपने आप सारे किवाड़े बंद हो गए। और बंद होते होते वो समय आ गया जब अभी वसुदेव जी ने उस लाली को देवकी के पास रख दिया। और बेड़ी लगनी चाहिए थी अभी, जब सब एज इट इज हो गए, जब द्वार सारे बंद हो गए, जाते वक्त खुल गए थे, आते वक्त बंद हो गए, अब बेड़ी नहीं आ रही है हाथ में। अरे भैया, जिसने भगवान को धारण कर लिया है, अब वो माया को दोबारा धारण कर ले तब भी उसका संसार में थोड़ी फंसने वाला है। अब कृष्ण को जिसने पा लिया, वो फिर से संसार में नहीं आने वाला। तो वसुदेव जी ने कृष्ण को अपने एक बार गोद में उठा लिया था, तो फिर अब कौन सा बंधन रहेगा वसुदेव जी को? तो वो बंधन लग ही रहा था। तो वसुदेव जी ने सोचा कि भैया ये सब तो मुझे तो कम से भय है। तो अपने वसुदेव जी ने अपने आप से उस बेड़ी को बांधकर अपने आप को लॉक कर लिया। और अब तक कोई नहीं रोया। देखिए, बच्चे साधारण रो पड़ते हैं, जैसे जन्म लेता है पहला चीज ऑपरेशन थिएटर में होता है, बाहर सब वेट करते रहते हैं। और जैसे ही अंदर से आवाज आती है तो पता चला हो गया ना। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति थी कि कोई नहीं हो रहा था। अब भगवान को लेकर गोकुल से यहाँ पर योग माया आ गई, योग माया भी नहीं हो रही थी। कब तक? जब तक सब एज इट इज सेट नहीं हो गया। जब सेट हो गया तब योग माया रो पड़ी। और जैसी वो रो पड़ी, सारे के सारे जितने पहरेदार सोए हुए थे सब जग गए, सारे के सारे पहरेदार जग गए। पहरेदार जग कर सबसे पहले कंस को खबर कर दी, कंस महाराज आपका काल प्रकट हो गया है, अब जल्दी आएंगे। अब कंस की ऐसी दशा थी कि जब कंस बारंबार बीच बीच में देवकी और वसुदेव को देखने आता था, जब उसको पता चला कि अभी 6 तो मर गए हैं, 7वां उड़ गया है, अभी 8वां आने वाला है, तो कंस बार बार बीच बीच में आता था देवकी को देखने के लिए। और एक समय ऐसा आया था कि जब भगवान देवकी के घर में आ गए थे, उस समय देवकी का जो तेज था इतना बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था कि बिना बल के ही अभी कारागृह सूती का ग्रह था, कारागृह था, लेकिन देवकी के तेज से वो पूरा कारागृह जो था वो जगमगा रहा था। वहां पर बल्ब या कोई दिया नहीं जल रहा था, लेकिन देवकी के शरीर से जो अंग कांति निकल रही थी उस कांति से सारा अंधकार नष्ट हो रहा था। और उस समय कंस समझ गया था क्या कि इसके गर्भ में निश्चित रूप से मेरा काल विष्णु आ गया है। अब जो कंस एक समय था जब आकाशवाणी की बात सुनकर देवकी को मारने चला था, वही कंस जब देवकी के गर्भ में जब देखता था ना, देवकी देवकी गर्भ में भगवान को देखता था कि इतना बड़ा तेज निकल रहा है, विश्वास था कि विष्णु आया है, तब कंस सोचता अब क्या करूं, उसको मारना तो उचित नहीं होगा। कंस विचार करता था ऐसे, एक तो बिचारी ये स्त्री है, मेरी बहन है और एक गरोदर है, अभी इसको ऐसे 6 बच्चों को मार दिया, तभी कीर्ति और यश याद नहीं आया, लेकिन अभी भगवान हृदय में है, उसके गर्भ में है, तो कंस विचार कर रहा है कि अरे इसको मार दूंगा ना तो मेरे अपकीर्ति हो जाएगी, तुम्हारे अपकीर्ति में बचा क्या है, 6 पुत्रों को तो मार दिया है। लेकिन देखिए भगवान के आने, भगवान के उसे गर्भ में होने का प्रभाव था कि कंस जैसे महाखल का भी चित बदल गया। इसलिए भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान का नाम जप करेंगे तो हमारे जो खल बुद्धि है जो भगवान को स्वीकार नहीं करती, भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करती, लेकिन नाम जप करेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, जो हमारी खल बुद्धि भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करती, भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करती, वो भी स्वीकार करने लगेगी। हमारा जो हमारी बुद्धि है ना भ्रष्ट हो चुकी है, कैसे, न्यूज पेपर पढ़ के, टीवी देख के, इधर उधर का कचरा सुन के, और ऐसे जो ऐसे संस्कार संसार में आज ऐसे संस्कार की बढ़ोतरी की जाती है कि भगवान अस्तित्व है ही नहीं, भगवान निराकार है, भगवान ये है, भगवान वो है, भगवान है ही नहीं, इस तरह का जो प्रचार किया जाता है उस कारण से हम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। होता कैसा है कि अगर संसार में सभी लोग ये प्रचार कर दें कि अरे भगवान है ही नहीं, भगवान का अस्तित्व कहाँ है, ये है वो है, इस तरह प्रचार करते हैं, तो जो सामान्य जनता है वो स्वीकार कर लेती है कि हाँ हाँ ऐसा है, ये लोग स्वीकार कर लेते हैं। और हमारे जो वास्तविक जो वैदिक संस्कृति है भगवद गीता भागवत, उसको हम भूल जाते हैं और हम लोग इस जो वेस्टर्न कल्चर है उसको हम लोग अपनाते हैं, हमारे वैदिक साहित्य को छोड़ देते हैं और जो काल्पनिक ग्रंथ लिखे जाते हैं उन काल्पनिक ग्रंथों का आश्रय लेते हैं लोग।